हरे कृष्णा। सबने अपने अपने जगह बना लिए है ना, लेकिन याद रखिए ये संसार में सभी कुछ अस्थाई है, टेम्पररी। हम कोशिश करते हैं तत्कालीन कोई सुविधाजनक परिस्थिति हमारे लिए हो, ज्यादा समय के लिए नहीं रहती है वो। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर सत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोविंद जी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री कूर्म क्षेत्र की जय। श्री कूर्म भगवान की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणे प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे मुकुं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरून् दीनतारणं वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धोभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस् तद्धाम वृंदावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधो वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादर न परः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। आशा करते हैं आप सबको अच्छी नींद कल रात को आई। आशा करते हैं कि आपने आपके रहने की व्यवस्था सब ठीक ठाक थी और किसी प्रकार की असुविधा आपको नहीं हुई, और थोड़ी बहुत हुई भी होगी तो समस्या का हल हुआ होगा कुछ। जैसे अपने घर में सुविधा है वैसे तो उपलब्ध हर जगह करवाना इतना आसान नहीं है, तो थोड़ी बहुत व्यवस्था में त्रुटियां हुई भी होंगी तो कृपया क्षमा कर दीजिए और सो थोड़ा सहन कर लीजिए। कई भक्तों को गर्मी की तकलीफ हो रही है, बट ये तो शुरुआत मात्र है, तो तैयार रहिए, आगे चल के बहुत कुछ हम देखने वाले हैं। फिर भी जितना हो सके प्रयास किया गया था कि गर्मी के कारण जितनी कम असुविधा हो उतनी हो, फिर भी प्रकृति की व्यवस्था है, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है। आप में से कई भक्त कल शाम के सत्संग में नहीं आ पाए, आप देर से विशाखापट्टनम आए, समुद्र के तट पे बैठ के हम ये चर्चा कर रहे थे कि तीर्थ यात्रा में जाने का सही भाव क्या होना चाहिए, कैसे थोड़ी बहुत तपस्या करने के लिए तैयार होना चाहिए, सेवा के लिए आतुर होना चाहिए। साथ साथ ये भी चर्चा हुई थी कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जब श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम आए तो थोड़ी ही देर बाद उनकी इच्छा हुई कि वो दक्षिण भारत की यात्रा में आए, और भक्त उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, बहुत दुखी हो गए थे। हरे कृष्णा। वो साथ में आना चाहते थे। अंततः नित्यानंद प्रभु ने निवेदन किया श्री चैतन्य महाप्रभु से कम एक कोई सहायक को साथ में ले जाएं, और महाप्रभु ने ये बात मान ली। काला कृष्णदास नाम के एक भक्त को चुना गया और वो श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ चलते रहे। महाप्रभु जब चलते तो सतत नाम कीर्तन करते, और इस तरह से जितने भी लोगों ने उनको देखा और उनको सुना, उन सब का उद्धार हो गया। वो सारे के सारे भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त बन गए, और जिन लोगों ने उन व्यक्तियों को देखा वो लोग भी शुद्ध भक्त हो गए, और जिन लोगों ने उन व्यक्तियों को देखा वो लोग भी सारे शुद्ध भक्त हो गए। इस प्रकार से भक्ति का एक विस्फोट जैसे हो गया दक्षिण भारत में। तो ऐसे चलते चलते श्री चैतन्य महाप्रभु आलालनाथ से निकल पड़े और श्री कूर्म क्षेत्र या श्री कूर्म स्थान इसमें आ पहुंचे। अभी हम इस कथा के बाद सीधे वही जाएंगे। लगभग यहां से 30 आधे घंटे का रास्ता है मेरे ख्याल से, थोड़ा बहुत यहां वहां हो सकता है। बहुत ही प्राचीन स्थान है ये। वैसे जिस मंदिर में हम जाएंगे, इस समय जो मंदिर खड़ा है वहां पे, ऐसे बताया जाता है कि ये लगभग 700 वर्ष पुराना होगा, और इस मंदिर के और कोई भाग होंगे जो उससे भी ज्यादा पुराने होंगे, हो सकता है 1500-2000 सालों तक। परंतु वास्तव में यहाँ का इतिहास जो है और यहाँ के विग्रह श्री कुरुम देव के, ये तो बहुत पुराने हैं, प्राचीन काल के हैं, लाखों वर्ष पूर्व के हैं, कोई गणना नहीं की जा सकती। और ये एक स्वयंभू मूर्ति है, स्वयंभू अर्थात जो अपने आप प्रकट हो जाते हैं। आप सब सुन पा रहे हैं ना, पीछे वहां सुन पा रहे हैं, और वहां पे आप सब भी सुन पा रहे हैं, सुन रहे हैं। स्वयंभू अर्थात जो अपने आप प्रकट हो जाते हैं। तो वैसे कूर्म देव के ज्यादा मंदिर नहीं है, जहां तक मुझे पता है सारे पृथ्वी में केवल 3 कूर्म देव के मंदिर हैं, एक कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में, और यहाँ पे श्रीकाकुलम जिला है ना, ये श्रीकाकुलम। आंध्र के कोई है क्या यहाँ पे? श्रीकाकुलम जिले में है। परंतु ये सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, सबसे प्राचीन, और अन्य 2 जो मंदिर हैं वो मूर्तियां स्वयंभू नहीं है और इतने प्राचीन नहीं है जितना कि यहाँ का मंदिर है और यहाँ की मूर्ति है। तो हम जिस स्थान में भी जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही विशेष है। इस तरह से हम मान भी सकते हैं कि दुनिया में ये एक ही कूर्म मंदिर है जो इतना विशेष है। भगवान नरसिंहदेव के अनेक मंदिर हैं, भगवान कृष्ण के तो बहुत सारे हैं, परंतु कूर्म देव के कितने मंदिर हैं? बहुत कम, बल्कि एक ही ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। आप सब तो बचपन से सुनते आए होंगे कूर्म देव की कथा, जब देवासुरगण दोनों समुद्र मंथन करना चाहते थे उसे अमृत पाने के लिए, तो मंदर पर्वत का प्रयोग किया गया समुद्र का मंथन करने के लिए, और वासुकी सांप भी रस्सी बन गए। परंतु जैसे देव और असुरगण मंथन कर रहे थे मंदर पर्वत को साथ में लेकर, मंदर पर्वत समुद्र में नीचे डूबते जा रहा था, और इसलिए मंथन का कार्य रुक गया बीच में। तो भगवान श्री विष्णु भगवान श्री कृष्ण ने कृपा करके ये कूर्म कूर्म अर्थात कछुआ कछुए का रूप धारण किया और वो पर्वत के नीचे चले गए समुद्र के भीतर। तो भगवान ने कछुए का रूप क्यों लिया? पहली बात, उनको समुद्र में अंदर जाना था नीचे। कछुआ आप जानते हैं बाहर भी रह सकते हैं पानी के अंदर भी रह सकते हैं। आप कभी कभी देखेंगे कि तालाबों में कभी कभी कुएं में भी कछुए रहते हैं, तो पानी में भी वो रह सकते हैं, वो जलचर प्राणी भी हैं और जमीन पर भी चल सकते हैं। दूसरी बात कि उनका पीठ जो है वो बहुत कठोर होता है, इसलिए वो चाहते थे कि पर्वत के नीचे जाके पर्वत का बोझ वो अपने ऊपर स्वीकार करें। तो उन्होंने कूर्म रूप धारण किया और मंदर पर्वत को मंथन के समय एक आधार मिल गया और फिर वो मंथन कर पाए। परंतु एक ओर से देवतागण, एक ओर से असुरगण जब इस तरह से खींच रहे थे मंथन करते हुए, तो जो पर्वत का संतुलन है वो बिगड़ते जा रहा था, कभी इस तरफ कभी उस तरफ पीठ के ऊपर। तो भगवान ने सोचा कि क्या किया जाए, तो उन्होंने और एक रूप धारण किया और उस अवतार का नाम है अजित। वो पर्वत के ऊपर जाके बैठ गए ताकि पर्वत स्थिर रहे, हिले नहीं मंथन के समय। और इस तरह मंथन चलता रहा, बहुत सी चीजें उत्पन्न हुई जिनका वर्णन श्रीमद् भागवत में पाया जाता है। अंततः जिस चीज के लिए मंथन किया जा रहा था अमृत, वो निकल आया। तो उस समय असुरों ने अमृत छीन लिया, तो भगवान ने तीसरा अवतार वहां लिया और वो है मोहिनी अवतार। आगे चल के हम मोहिनी देवी के मंदिर में भी जाने वाले हैं आने वाले दिनों में, तो वहां मोहिनी देवी के विशेष अवतार की चर्चा करेंगे। तो भगवान ने मोहिनी अवतार लिया, असुरों को भ्रमित कर दिया, उनसे अमृत छीन लिया और देवताओं में बांट दिया। इस तरह से इस समुद्र मंथन की लीला में भगवान ने तीन अवतार लिए, कूर्मदेव, अजित देव और मोहिनी देवी। तो यही है वो कूर्मदेव, दशावतार में से एक। तो ये स्थान एक बहुत प्राचीन स्थान है, इस स्थान का वर्णन अनेक पुराणों में है। कूर्म पुराण में तो होना ही होना था, कूर्म पुराण है, ब्रह्मांड पुराण, पद्म पुराण इत्यादि। और ये कलिंग प्रांत में है। कलिंग नाम आपने सुना होगा आपके पाठशाला के इतिहास के कक्षाओं में, राजा अशोक ने कलिंग के ऊपर युद्ध किया था और उसके बाद उन्होंने देखा कि कितने लोग मर गए, फिर उनको बहुत पछतावा हुआ, फिर वो बौद्ध बन गए। खैर, आजकल ऐसे भी इतिहासकार हैं जो कहते हैं कि ये वर्णन इतना सही नहीं है, लेकिन जो भी ये हमने पढ़ा था, तो कलिंग प्रांत का नाम ये काफी प्राचीन है, हम सब सुन चुके हैं। तो कलिंग वास्तव में महानदी और गोदावरी, इन दोनों नदियों के बीच में जो स्थान है उसे कलिंग कहते हैं। यहाँ महाभारत में भी वर्णन है, ऐसे कहा जाता है यहाँ पर पांडव भी आए थे इस क्षेत्र में अपने वनवास के समय। यहाँ पे मंदिर बहुत सुंदर है और श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ सन 1512 में आए थे। अलालनाथ से चलते चलते संन्यास उन्होंने 1510 में ली और फिर यहां पे चले आए 1512 में। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब यहां पे आए थे कूर्म क्षेत्र में, तो तो उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों की स्थापना की मंदिर के प्रांगण में, बल्कि उस बाहरी द्वार में पास में ही। तो जब हम मंदिर में जाएंगे तो श्री चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों का दर्शन भी करेंगे। तो देखिए, न केवल महाप्रभु वहां गए थे लेकिन हमारे सारे आचार्यगण भी गए हैं। तो ऐसे स्थानों में हमारे लिए जाना बहुत लाभदायक है, उचित है। बहुत अच्छे ढंग से यहाँ निर्माण कार्य हुआ है। लगभग 500 खंभे होंगे, यहाँ पे स्तंभ होंगे। अच्छे तरह से शिल्प शास्त्र का दर्शन हम यहाँ पे कर पाएंगे। पास में एक पुष्करणी है जिसे स्वाति पुष्करणी कहते हैं। पुष्करणी अर्थात एक कुंड। विशेष रूप से दक्षिण भारत में हम देखेंगे कि मंदिरों के पास एक छोटा सा कुंड होता है जिसको पुष्करणी कहते हैं। उत्तर भारत में भी ऐसे देखा जाता है, परंतु सब जगह नहीं। लेकिन दक्षिण भारत के जितने भी प्राचीन मंदिर हैं, आप देखेंगे कि पुष्करणी अवश्य हुआ करती थी वहां पर। और इस स्थान का संबंध तीन संप्रदायों से गहरी रूप से है। एक श्री संप्रदाय, आगे चल के हम देखेंगे कैसे। दूसरा मध्व संप्रदाय और तीसरा गौड़ीय संप्रदाय अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय। बहुत सुंदर वहां पे चित्र आदि हैं, दशावतार के चित्र हैं और ऊपर भी और दीवारों पे भी। और अंदर कुरुमदेव की मूर्ति है और मूर्ति कुरुमदेव के दोनों तरफ, एक तरफ है सीता राम लक्ष्मण की मूर्तियां और दूसरी तरफ है गोविंद राज अर्थात कृष्ण, और उनके साथ में है रुक्मिणी और सत्यभामा देवी। तो ये सब हम देखेंगे जैसे हम प्रवेश करेंगे। अब इस मंदिर में एक विशेष बात ये है कि कूर्मदेव भगवान बाएं ओर देख रहे हैं, बाएं दिशा की ओर देखते हैं, जबकि मंदिर का मुख जो है वो पूर्व दिशा में है। तो पहले कूर्मदेव का मुख पूर्व दिशा की ओर हुआ करता था, इसलिए मंदिर वहां से उस तरफ मंदिर का मुख भी था। परंतु ऐसे कुछ हुआ कि भगवान कूर्मदेव का मुख उल्टी तरफ आ गया, तो मंदिर पूर्व की ओर है, भगवान का मुख पश्चिम की ओर है। तो ऐसे क्यों हुआ? और साथ साथ और एक विशेष बात है कि यहां पे दो ध्वज स्तंभ हैं। दक्षिण भारत में और एक विशेष बात मंदिरों में हम देख पाएंगे कि ध्वज स्तंभ होता है, ध्वज होता है हर एक मंदिर के सामने, प्रवेश द्वार के आगे, जिसमें कभी दीप जलाए जाते हैं, कभी गरुड़ जी भी होते हैं। इस मंदिर में दो हैं और ये क्यों हैं ये भी हम थोड़ी देर में सुनेंगे। परंतु सबसे पहले हमें ये जानना है कि भगवान कूर्मदेव का मुख पश्चिम की दिशा की ओर क्यों है। पहले वो पूर्व की ओर थे, फिर अब पश्चिम की ओर कैसे आए? तो वैसे एक प्रथा है जो यहां मान्य है। कई हमारे संस्था के भक्त, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के भक्त ऐसे कहते हैं कि यहां पे बिल्व मंगल ठाकुर थे और उनका एक मंदिर वहां पे है और चतुर्भुज रूप में उनकी मूर्ति वहां है और मंदिर के नीचे उनकी समाधि है अभी भी। वो जब एक बार भगवान के पीछे, मूर्ति के पीछे वो खड़े थे, बहुत तीव्रता से प्रार्थना कर रहे थे भगवान से, तो अपने भक्त बिल्व मंगल ठाकुर को देखने के लिए भगवान कूर्मदेव ने अपना स्थान उलट लिया। पूर्व की ओर देख रहे थे, अब पश्चिम की ओर देखने लगे बिल्व मंगल ठाकुर की ओर। तो ये बात यहां इसकी मान्यता यहाँ पर नहीं है। थोड़े भक्त कहते हैं इसे, परंतु यहाँ जो मान्यता है वो श्रील रामानुजाचार्य से संबंधित है। श्रील रामानुजाचार्य यहाँ पे आए थे जगन्नाथपुरी में, तो जगन्नाथपुरी और कुरुक्षेत्र का भी संबंध है। जब रामानुजाचार्य, जो कि श्री संप्रदाय के संप्रदाय आचार्य हैं, बहुत ही प्रसिद्ध थे, तो जगह जगह भ्रमण करते थे। कन्याकुमारी से लेकर बद्रीनाथ तक उन्होंने भ्रमण किया था। सारे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों में वो गए थे और एक बार जगन्नाथपुरी भी आए। तो जगन्नाथपुरी आके उन्होंने भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया, तो उन्होंने देखा कि यहाँ की जो अर्चना विधि है वो काफी अलग है। रामानुजाचार्य ने श्रीरंगम में और जितने भी अन्य विष्णु मंदिर हैं उनमें पूजा विधियों को बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित करके रखा था। जैसे वैष्णव पंचरात्र आगम शास्त्रों में वर्णन है, वैसे ही उन्होंने सारे विधियों की स्थापना की और श्रीरंगम में सारे पूजा की विधियों की स्थापना उन्होंने स्वयं कर ली। मेलकोटे में भी उन्होंने जब वहां वो निवास करते थे 12-13 वर्षों के लिए, तो उस समय में भी उन्होंने अच्छी तरह से पूजा विधि की स्थापना की। परंतु जब जगन्नाथपुरी में वो आए, उन्होंने देखा कि यहाँ कुछ हिसाब अलग ही है। आप जानते हैं कि जगन्नाथपुरी भगवान कृष्ण या विष्णु के मंदिरों में से अनेक कारणों के लिए विशेष है। उनमें से ये एक कारण है कि यहाँ की विधियां, यहाँ की प्रथाएं, यहाँ के नियम अन्य वैष्णव मंदिरों से काफी अलग है। हालांकि यहाँ भी सारे महत्वपूर्ण उत्सव मनाए जाते हैं, रामनवमी, जन्माष्टमी इत्यादि, चंदन यात्रा, कार्तिक महीना, ये सब मनाया जाता है अवश्य। परंतु जगन्नाथ भगवान एक ऐसे भगवान हैं जो चाहते हैं कि उनके भक्तों के साथ जो उनका संबंध है वो बहुत विशेष बना रहे। हम सब ने भगवान जगन्नाथ की कथा सुनी है कि भगवान जगन्नाथ पहले कैसे नीलाचल में रहा करते थे नील माधव के रूप में, और एक शबर जिनका नाम है विश्ववसु वो देखभाल करते थे, और आखिर फिर विश्ववसु के योगदान से और राजा इंद्रद्युम्न महाराज के एक मंत्री विद्यापति के सहायता से फिर यहां जगन्नाथ भगवान प्रकट हुए नीलाचल में। नील माधव तो नहीं मिले, अप्रकट हो गए, और फिर विश्वकर्म जब आए थे एक वृद्ध व्यक्ति के वेश में, तो उन्होंने ये मूर्तियां बनाई जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई के, फिर उनकी स्थापना वहां जगन्नाथपुरी में हुई। क्योंकि भगवान जगन्नाथ के सेवक पहले नील माधव के रूप में वो शबर थे। शबर अर्थात जो शिकारी होते हैं, चंडाल होते हैं, तथा कथित नीच वर्ग के लोग होते हैं, वो उनकी सेवा बड़े ही भक्ति से किया करते थे। इसलिए जब अब इनका रूप बदल गया जगन्नाथ के रूप में, तो जगन्नाथ उनके भूले नहीं। तो जगन्नाथ ने कहा कि ये जो मेरे सेवक हैं इनके लिए भी मैं कुछ व्यवस्था करूंगा। तो जब जगन्नाथ भगवान की स्नान यात्रा होती है और उसके बाद अनवसर के समय जब भगवान जगन्नाथ दर्शन नहीं देते हैं 15 दिनों के लिए लगभग, तो उस समय ये जो शबर के कुल के जो लोग हैं जिनको दैत कहते हैं, केवल वही भगवान की सेवा करते हैं। ऐसे बताया जाता है कि भगवान जगन्नाथ उस समय बीमार हो जाते हैं, उनको बुखार आता है, तो जड़ी बूटियां, औषधियां आदि उनको दी जाती हैं, तो ये सारा देखभाल जो है ये दैत्यपति करते हैं, ये लोग ब्राह्मण नहीं है और उनकी विधियां नहीं है। उनका प्रेम ऐसे है, परस्पर स्वाभाविक प्रेम है, तो यहां विधियों का कोई विचार नहीं होता। अपने अपने विधियां नियम उन्होंने बनाए हैं, परंतु ये वैदिक पंचरात्र आगम शास्त्रों से मिलते जुलते नहीं है। तो और भी ऐसे कई प्रथाएं हैं, समय समय पे जैसे जैसे भगवान जगन्नाथ के बड़े बड़े भक्त आते रहे, उनकी कोई विशेष इच्छा रही तो भगवान जगन्नाथ ने स्वप्न में आके आदेश दिया कि आज से ये भी कार्य होना चाहिए। जैसे एक माता जी थी जिनका नाम था कर्माबाई, वो रोज खिचड़ी बनाती थी लेकिन उनको खिचड़ी को स्वीकार नहीं किया जाता था, तो भगवान जगन्नाथ ने कहा मैं उस खिचड़ी की बिना रहूंगा नहीं। तो फिर उसके बाद से वो खिचड़ी बनाना चालू हो गया, उसे आज भी कर्माबाई की खिचड़ी कहते हैं। ऐसे गीत गोविंद हर रात भगवान को सुलाते समय गाया जाता है, और ऐसे कोई वस्त्र है जिन पे बुनाई है गीत गोविंद की, और वो वस्त्र को ओढ़ा जाता है भगवान के शरीर पे, जब ओढ़ा जाता है तब भगवान विश्राम करते हैं, यदि वो नहीं हुआ तो भगवान विश्राम नहीं करते। और एक बात यह है कि जैसे स्टार्च होता है ना कपड़े को पहले धोने के बाद, उसको क्या कहते हैं, मार होता है, तो कड़क हो जाता है, वैसे अर्चना विधि के अनुसार ऐसे वस्त्र को पहनना नहीं चाहिए, उसको धो के ही पहनना चाहिए, परंतु भगवान जगन्नाथ को ऐसे वस्त्र पहनाया जाता है। तो कई चीजें ऐसे हैं जो साधारण वैष्णव और पंचरात्रिक विधि विधियों के अनुसार नहीं है। और रामानुजाचार्य तो इतने बड़े भगवान विष्णु के भक्त थे और बिल्कुल सब विधिवत वो किया करते थे। अब यहां आए तो उन्होंने देखा अरे ये क्या हो रहा है यहां पे, यहां तो कुछ भी हो रहा है। वो समझ नहीं पाए कि जगन्नाथ और उनके भक्तों के बीच में भाव कैसा है। तो उन्होंने पंडों से बात करने का प्रयास किया, पंडे सुनने के लिए तैयार नहीं थे। रामानुजाचार्य तो बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े आचार्य हैं, बहुत बड़े पंडित भी थे। उस समय जगन्नाथपुरी में राजा थे, गंगा वंश चल रहा था, अनंत वर्मन चौदह गंगादेव वो राजा का नाम था। ऐसे कोई लोग कहते हैं, निश्चित हमें नहीं पता, लेकिन कोई लोग कहते हैं कि इस राजा का झुकाव शैव सिद्धांत की ओर था, वैष्णव सिद्धांत की ओर न होकर थोड़ा झुकाव यहां था। तो रामानुजाचार्य के साथ उनकी लंबी बातचीत हुई, रामानुजाचार्य ने बहुत प्रचार किया उनको, फिर बहुत ही श्रद्धालु वैष्णव बन गए अनंत वर्मन चौदह गंगादेव। और फिर रामानुजाचार्य ने उनसे कहा कि जिस तरह से यहां पूजा विधि हम देख रहे हैं वो शास्त्रों के आधार से नहीं है, तो यहां परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो मैं बताऊंगा कि कैसे पंचरात्रिक आगम शास्त्रों के अनुसार अर्चना विधि होनी चाहिए। तो उन्होंने सारे विस्तार में सब कुछ बताया, राजा भी पूरी तरह से मान गए। जब पंडों को यह बात सुनाई गई तो पंडों ने साफ मना कर दिया, ये प्राचीन काल से चलती आ रही है, मंदिर का निर्माण सबसे जब से हुआ तब से ये चलते आ रही हैं विधियां, हम इनको बदलने के लिए तैयार नहीं हैं, ये स्वयं जगन्नाथ देव की इच्छा है तो हम इसको नहीं बदल सकते। परंतु रामानुजाचार्य के प्रभाव से राजा ने कहा कि नहीं, ऐसे ही होना है, अब नई विधियां आएंगी यहां पे पूजा के लिए और आप सबको मानना ही होगा। तो फिर राजा ने कहा कि इस दिन से सुबह ये नई विधियां प्रारंभ होंगी। तो उन्होंने रामानुजाचार्य से कहा कि आप कल सुबह आइए, मैं भी वहां आऊंगा, और उस समय हम नई विधियों का उद्घाटन करेंगे। तो राजा तो सही समय पर पहुंच गए, परंतु रामानुजाचार्य नहीं आए। तो जब नहीं आए तो सारे पंडित लोग वहां देख रहे थे क्या करना चाहिए। अभी कुछ भगवान को तो विधियों के बिना, पूजा के बिना तो रख नहीं सकते। तो राजा ने कहा ठीक है, पुराने विधियों के अनुसार ही करते रहो, अब देखेंगे कि रामानुजाचार्य क्यों नहीं आए। फिर उन्होंने अपने लोगों को भेजा कि भाई देखो कहाँ हैं श्रीपाद रामानुजा। तो वहां जाके उनके कमरे में देखा कि वो तो गायब है, नहीं है वहां पर। तो यहां पर पुराने विधियों के अनुसार ये बात चलती रही, परंतु रामानुजाचार्य नहीं थे। तो वो कहां थे? वो अचानक चले आए कुरुक्षेत्र में, जहां हम जाने वाले हैं। जब रात को सोने गए थे जगन्नाथपुरी में, अपने कमरे में सोने लगे, जब जागे तो कुरुक्षेत्र में जागे सुबह को। तो ये बहुत विचित्र बात हो गई, अद्भुत बात हो गई। तो इस तरह से जब यहां पर आए रामानुजाचार्य, तो वैसे कई वर्णन है इसके। जब रामानुजा, एक वर्णन के अनुसार भगवान जगन्नाथ प्रसन्न नहीं हुए और उन्होंने रामानुजाचार्य को स्वप्न में आके कहा, यहां जो नियमों की स्थापना की है वो मैंने की है, आप कौन होते हो बदलने के लिए? ये मेरे नियम हैं और यहां मेरे और मेरे प्रिय भक्तों के बीच में जो संबंध है प्रेम का, वो बहुत विशेष है, अन्य मंदिरों की तरह नहीं है। तो इसलिए यहां पे कुछ हस्तक्षेप नहीं करना, यहां पे कुछ बदलने का प्रयास नहीं करना, जैसे है वैसे ही यहां सब कुछ चलता रहेगा। तो इसलिए जगन्नाथ भगवान ने ये कहा कि यहां अब मेरे पंडों, मेरे भक्तों को परेशान नहीं करना। तो जगन्नाथ भगवान ने ही उनको नींद में ही यहां से वहां स्थानांतरित कर दिया। ऐसे जगन्नाथपुरी में मान्यता है और ऐसे चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों के भी मान्यता है। श्री संप्रदाय में मान्यता इतनी तो है कि वो सोए थे जगन्नाथपुरी में और जागे कुरुक्षेत्र में, परंतु परिस्थितियां क्या थी उसके बारे में थोड़ी मतभेद है थोड़ा। तो श्री संप्रदाय के भक्त ऐसे मानते हैं कि हालांकि ये ग्रंथ में किसी में नहीं है, वो ऐसे मानते हैं कि भगवान जगन्नाथ उस रात को रामानुजाचार्य के स्वप्न में आए और कहने लगे कि देखो यहां जो मेरे भक्त हैं मान नहीं रहे हैं। तो ये प्रस्ताव हम स्थापित नहीं कर सकते, आपकी जो इच्छा है वो हम पूर्ण नहीं कर पाएंगे कि यहां बहुत विरोध हो रहा है, यहां के पंडे नहीं मान रहे हैं, ये भी मेरे ही भक्त हैं तो इनको भी मुझे संभालना है। इसलिए अब आपका जो प्रस्ताव था वो रद्द किया जा रहा है, जो पुरानी प्रथाएं थी यहां पर, पुराने विधियां हैं उनके अनुसार ही यहां सब कुछ चलेगा। और फिर कोई लोग उनके संप्रदाय में ऐसे कहते हैं कि पंडों में से और जो स्थानिक लोग थे वहां के, थोड़े बहुत उनमें से थोड़े लोग बहुत क्रोधित हो गए थे रामानुजाचार्य के ऊपर कि कैसे यहां पे आके इतनी प्राचीन पद्धति को सब बदलने का प्रयास कर सकते हैं, राजा को भी उन्होंने प्रभावित कर दिया है। तो इतना द्वेष उनके हृदय में उत्पन्न हो गया कि वो चाहते थे कि हत्या कर दे रामानुजाचार्य की। तो जब उनके पास गए तो भगवान जगन्नाथ ने उनको अदृश्य करा दिया और जगन्नाथपुरी से स्थानांतरित करके वो कुरुक्षेत्र में लेकर छोड़ दिया। तो ऐसे कहते हैं। अब श्री वैष्णव संप्रदाय के दो या तीन महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिनमें इन लीलाओं का वर्णन है, विशेष रूप से जो यहाँ कुरुक्षेत्र में घटे जब महाप्रभु जब रामानुजाचार्य यहाँ पर आए। एक किताब है प्रपन्नामृत, नंबी केशवाचार्य नाम के श्री वैष्णव द्वारा रचित है ये किताब, और दूसरा है आचार्य सूक्त मुक्तावली। तो इन दोनों ग्रंथों में वर्णन है, परंतु वर्णनों में थोड़ा अंतर है। जो प्रपन्नामृत में वर्णन है वो इस प्रकार से है कि जब वहां पे रामानुजाचार्य पुरी में रात को सो रहे थे, तो भगवान कूर्मदेव उनके स्वप्न में आए और उन्होंने कहा कि देखो मैं यहां पे इस स्थान में हूं, परंतु मुझे यहां पे लोग शिवलिंग मानते हैं। उनको नहीं पता कि मैं कौन हूं, उनको नहीं पता कि मैं कूर्मदेव हूं। वो सोच रहे हैं कि मैं शिवजी हूं और मेरी मूर्ति को शिवलिंग समझकर वो शैव पद्धति के अनुसार मेरी पूजा अर्चना करते हैं। तो आप वहां पे जाओ, वहां जाके जो वहां शैव अर्चक गण हैं उनसे चर्चा करो और उन्हें समझाओ कि ये मूर्ति वास्तव में शिवलिंग न होकर ये कूर्मदेव की मूर्ति है, और वहां जाके फिर वैष्णव पद्धति के अनुसार उपासना प्रारंभ करो। तो इसलिए रामानुजाचार्य फिर अपने शिष्यों सहित वहां पहुंच गए और उन्होंने वहां के शैव अर्चकों के साथ काफी चर्चा की और फिर सफल हुए समझाने के लिए सबको कि ये वास्तव में कूर्मदेव हैं, शिवजी नहीं हैं, और फिर वैष्णव पद्धति के अनुसार अर्चना विधि प्रारंभ हुई। अब ये आचार्य सूक्त मुक्तावली ग्रंथ में वर्णन थोड़ा अलग है, उसमें ये भी श्री संप्रदाय का ही ग्रंथ है, उसमें ये बताया जाता है कि भगवान जगन्नाथ ने रात में ही जबकि रामानुजाचार्य सो रहे थे उनको स्थानांतरित किया जगन्नाथपुरी से यहां कुरुक्षेत्र में। जब प्रातः काल में रामानुजाचार्य नींद से जागे तो उन्होंने देखा कि मैं तो किसी कुंड के पास हूं, ये बहुत पवित्र कुंड लग रहा है, इस स्थान को पहचान नहीं सके। अचानक उनको शोक हो गया जब समझ में आया कि वो जगन्नाथपुरी में नहीं है, भगवान जगन्नाथ उनको कोई दूसरे स्थान में लेकर आए हैं। तो उनको दुख हुआ कि मेरे शिष्यों से मैं दूर हो गया, भगवान जगन्नाथ ने मुझे अपने दर्शन से वंचित कर दिया। फिर उन्होंने देखा कि ये स्थान भी कोई साधारण नहीं है, मुझे इसका अनुभव हो रहा है कि ये स्थान भी बहुत दिव्य है, और यहां ये पुष्करिणी है तो अवश्य मंदिर पास में होगा। तो फिर इधर उधर देखा तो मंदिर पास में देखा उन्होंने और अंदर चले गए। तब अंदर चले तो उन्होंने विग्रह देखा वहां पे, और उस समय वो पहचान नहीं पाए कि ये किन का विग्रह है। उनको ऐसे लगा कि ये शिवजी की मूर्ति है, शिवलिंग है ये। तो निराश होकर वो आ गए और सारा दिन उन्होंने उपवास किया। क्यों? क्योंकि जब तक कोई भोजन भगवान विष्णु को अर्पण नहीं किया जाता था, रामानुजाचार्य नहीं ग्रहण करते थे उस भोजन को। तो अब जब उन्होंने देखा कि ये शिवलिंग है तो मैं भोजन अर्पण नहीं कर सकता हूं, तो ऐसे ही उपवास किया। सारा दिन ऐसे बीत गया। रात को जब सोने लगे, उनकी नींद में भगवान कूर्मदेव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मैं शिव नहीं हूं, मैं कूर्मदेव हूं, तो यहां लोगों के साथ चर्चा करो, और चर्चा करके सही ढंग से मेरी पूजा यहां करवाओ। तो वहां पे जो अर्चक थे उपासक थे, पुजारी गण थे, वो सब शैव थे, त्रिपुंड ऐसे डालते हैं ना। तो उनसे जब चर्चा की तो वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि ये शिव जी के अलावा और कोई भी हो सकते हैं। तो इस ग्रंथ में आचार्य सूक्त मुक्तावली में काफी विस्तार में उस वाद का वर्णन है जो कि रामानुजाचार्य और उन शैवों के बीच में हुआ। फिर शैव कहने लगे, इतने प्राचीन काल से हम लोग शिव जी की उपासना यहां करते आए हैं और अचानक आप यहां के अब कह रहे हो कि ये कुर्मदेव है, शिव जी नहीं है, हम ये मानने के लिए तैयार नहीं है। तो काफी वाद हुआ दोनों के बीच में। अंततः उन्होंने कहा, ठीक है, आप यहां मंदिर के पीछे जाओ और वहां प्रार्थना करो आपके कुर्मदेव को। यदि यहां भगवान की मूर्ति पलट जाती है और फिर वो आपकी ओर मुख करते हैं ये मूर्ति, तो फिर हम मान जाएंगे कि ये कुर्मदेव हैं, अन्यथा हम जानेंगे कि ये शिवलिंग ही है। तो रामानुजाचार्य पीछे गए, तब तक उनके शिष्यगण भी आ गए थे। तो उन्होंने इतनी तीव्रता से प्रार्थना की कि भगवान मुड़ गए पूरे उल्टे दिशा में। पहले उनका मुख पूर्व की ओर था, अब उनका मुख पश्चिम की ओर आ गया। अब वैसे इन शैव लोगों को मानना चाहिए था, परंतु नहीं मानी बात उन्होंने। फिर भी उन्होंने इनकार किया कि नहीं, ने और कोई बात कहने लगे। उस समय इस ग्रंथ में ऐसे वर्णन है कि रामानुजाचार्य उनके शिष्य एक तरफ और ये सब शैव अर्चक दूसरी तरफ, उनके बीच में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। और फिर रामानुजाचार्य के शिष्य ज्यादा मजबूत थे, तो उन्होंने इन शैव अर्चकों को हरा दिया। फिर वो सब भाग गए वहां से। और उसके बाद रामानुजाचार्य ने वहां कुरुमदेव की स्थापना की और शैवों के प्रति विजय प्राप्त करने के अवसर पे उन्होंने दूसरा ध्वज स्तंभ स्थापित किया उल्टी दिशा में, जहां अब भगवान ने मुख किया था। जिस दिशा में भगवान मुख करते हैं वहीं ध्वज स्तंभ की स्थापना होती है। तो पहले ध्वज स्तंभ यहां था, अब भगवान ने जब अपना अपनी मुख की दिशा बदल दी तो नया ध्वज स्तंभ वहां निर्माण कर दिया रामानुजाचार्य ने। इस तरह से दो ध्वज स्तंभ हैं। और फिर वहां पे अर्चना विधि इत्यादि वहां पे प्रारंभ हो गया। उस समय से ये कूर्म स्थान एक वैष्णव तीर्थ स्थान माना जाता है। वैसे पहले से एक कूर्म स्थान ही था, बीच में कहीं कुछ हो गया, लुप्त हो गया वो स्थान। हो सकता है जंगल में आके वहां के निवासी इसे कोई दूसरे देवता मान के कर रहे होंगे, बीच में कोई शैव आ गए होंगे, उन्होंने सोचा ये तो शिवलिंग है। ऐसे बीच में काफी समय बीत गया जब कुरुमदेव की पूजा सही ढंग से नहीं हो रही थी, तो रामानुजाचार्य ने स्थापित कर दिया पुनः कुरुमदेव की पूजा। और एक वर्णन इस प्रकार से है कि जब रामानुजाचार्य यहां पर आए और उन्होंने देखा कि स्वप्न में उन्होंने कुरुमदेव ने उनको बताया कि ये वास्तव में शिवलिंग है, शिवलिंग नहीं है, कुरुमदेव हैं, तो उन्होंने वहां के जो थोड़े बहुत स्थानिक लोग थे उनसे चर्चा की। तो उन्होंने भी कहा, हाँ, ये प्राचीन काल से हम सुनते आए हैं हमारे बुजुर्गों से कि कथाएं पुरानी हैं कि यहां ये कुरुमदेव हैं। तो आश्चर्य हुआ रामानुजाचार्य को। फिर भी अनेक ऐसे लोग भी थे जो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए रामानुजाचार्य ने यह चमत्कार करवा के दिखाया और कुर्मदेव ने फिर अपनी दिशा बदल दी, अपने मुख को बदल दिया। तो इस तरह से श्रीपाद रामानुजाचार्य की कथा यहाँ पे है, कितना महत्वपूर्ण ये स्थान है हम जान सकते हैं। नवद्वीप महात्म्य में भी भक्ति विनोद ठाकुर इस घटना का उल्लेख करते हैं कि जब रामानुजाचार्य का स्थानांतरण हुआ जगन्नाथपुरी से कुर्म क्षेत्र में, काफी दूर है वैसे। अब यह हुआ कुर्म क्षेत्र का संबंध श्री संप्रदाय या रामानुज संप्रदाय से। अब मध्वाचार्य संप्रदाय से क्या संबंध है इस स्थान का? रामानुजाचार्य के आने के लगभग, रामानुजाचार्य कब आए होंगे, मेरे ख्याल से सन 1111वें या 12वीं शताब्दी में आए होंगे, तो उसके और थोड़े समय बाद फिर मध्वाचार्य आए उडुपी में। मध्वाचार्य के गुरु का नाम था पुरुषोत्तम महातीर्थ। मध्वाचार्य का सन्यास नाम था आनंद तीर्थ, और उन्होंने एक शिष्य बनाए जिनका नाम था नरहरि तीर्थ। तो नरहरि तीर्थ की सेवा और उनका स्थान यहां कुर्म क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। पहले वैसे ये ग्रंथ है जिसका नाम है नरहरि यति स्तोत्र, जिसमें श्री नरहरि तीर्थ के बारे में काफी कुछ, उनकी जीवनी के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है। साथ साथ कुर्म क्षेत्र के मंदिर में ऐसे कई पत्थर हैं, दीवारें हैं, जहां पत्थर में ही बहुत सी चीजें लिखी हुई हैं, और उनसे भी हम काफी कुछ जान सकते हैं नरहरि तीर्थ के बारे में। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने चैतन्य चरितामृत मध्य लीला सातवें अध्याय के तात्पर्य में भी इन बातों को दोहराया है, जो कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने तात्पर्यों में कहा था। तो सारांश ये है कि नरहरि तीर्थ सन्यासी बनने के पहले इस कलिंगा प्रांत में ही निवास करते थे, बहुत कुलीन परिवार के थे, और उनके परिवार का घनिष्ठ संबंध राज परिवार से था। वैसे उनका पेशा था मंत्री बनने का, और ये परंपरागत चल रहा था। तो उनके पिताजी ऐसे ये सब राजा के मंत्री हुआ करते थे, बहुत बुद्धिमान थे, और इनका नाम था उस समय श्याम शास्त्री। तो ये भी ऐसे मंत्री की सेवा कर रहे होंगे उस समय। ये बहुत ही बड़े विद्वान थे अद्वैतवाद में, आदि शंकराचार्य के दर्शन में बहुत ही प्रवीण हो गए, बहुत बड़े जाने माने एक अद्वैतिन हो गए वे। और जब मध्वाचार्य वहां पर आए थे कुर्म क्षेत्र में भगवान कुर्मदेव का दर्शन करने के लिए, तो उन्होंने उनसे वाद करने का प्रस्ताव किया श्याम शास्त्री ने। देखिए आजकल जैसे स्पर्धाएं तरह तरह की होती है ना, खेल क्रीड़ा की स्पर्धाएं होती हैं, उस समय स्पर्धाएं हुआ करती थी वाद की। एक कोई वाद का पालन करने वाला व्यक्ति, कोई बहुत बड़ा विद्वान, वो अन्यों को ऐसे चुनौती देता था कि चलो मुझसे वाद करो, और हम में से जो भी जीत जाएगा वो दिग्विजयी होगा। तो ऐसे कई पंडित हुआ करते थे जो जगह जगह जाकर अपने पांडित्य का प्रदर्शन करते थे, अन्यों से विजय पात्र आदि पे हस्ताक्षर लेकर सब जगह घोषणा करते थे कि देखो मैं सबसे बड़ा पंडित हूं, इनके साथ स्पर्धा में मैं जीत गया, उनके साथ भी जीत गया। तो ऐसे हुआ करता था, और कभी कभी ये केवल अहंकार के लिए नहीं हुआ करता था, कभी कभी ये पंडित अपने सिद्धांत अपने विचारधारा की रक्षा के लिए, और उस विचारधारा से जो और विचारधाराएं थी जो मिलती जुलती नहीं थी उनका खंडन करने के लिए, अपनी विचारधारा को पूर्णतया स्थापित करने के लिए वो ऐसे स्पर्धाओं में जाते थे, वाद की स्पर्धाएं। आज हम देखते हैं कि सब जगह वाद और तर्क तो होते ही रहते हैं, परंतु न तो इसमें कोई उसूल है, कोई नियम है, कोई नीति है, न कुछ। जिसे जो मन में आए वो कहता है। हर विषय में, विशेष रूप से भगवान के विषय में, तो हर एक व्यक्ति पंडित है। हर एक व्यक्ति सोचता है कि ये मेरा विचार है इसलिए सही होना चाहिए। तो अनाप शनाप कुछ भी कहने लगते हैं भगवान के बारे में, शास्त्रों के बारे में, धाम के बारे में। और जब कोई विद्वान आके उनके साथ बैठता भी है चर्चा करने के लिए, तो अपने अहंकार के कारण, केवल अपने अहंकार की रक्षा करने के लिए वो कुछ न कुछ कहते रहते हैं। सामने वाले की बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं और हार भी जाते हैं। उनके पास कोई तर्क भी नहीं रहता है, कोई जवाब नहीं रहता है, फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो इस तरह के लोग उस समय नहीं थे, ईमानदार थे। बौद्धिक स्तर पे भी वो ईमानदार थे। तो जब ऐसे कई घटनाएं हुई हैं रामानुजाचार्य के जीवन में, मध्वाचार्य के जीवन में, श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन में, देखिए जब चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य और प्रकाशानंद सरस्वती और उनके साथ जितने भी मायावादी सन्यासी थे वाराणसी में, उन्हें वैष्णव सिद्धांत सही तरह से समझाया, उनके गलत विचारों का खंडन किया और भक्ति के सिद्धांत की स्थापना सुचारू रूप से उन्होंने की, तो ये सारे मान गए, अपने विचारों को उन्होंने बदल लिया। उसी तरह से रामानुजाचार्य ने कितने सारे जैन आदि मुनियों को भी परिवर्तित कर दिया वैष्णव में। कई बौद्ध भी थे, कई मायावादी थे। उसी तरह से मध्वाचार्य ने भी किया। और वहीं कुरुक्षेत्र में एक वाद हुआ मध्वाचार्य और श्याम शास्त्री के बीच में। और ये वाद ऐसा नहीं कि बस आधे घंटे के लिए चिल्लम चिल्ली करके, कोई शोर मचा के, एक दूसरे के आरोप लगा के, उंगली दिखा के मामला खत्म। प्रकाश ने केवल उष्णता, ऐसा तर्क नहीं होता था उस समय। केवल गर्मी, लेकिन प्रकाश नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई अच्छा निष्कर्ष नहीं निकलता है। ज्ञान को यदि प्रकाशित होना है या प्रकट होना है तो सत्वगुण की आवश्यकता होती है, परंतु रजगुण या तमगुण के अंतर्गत जाके हम कुछ तथ्य की स्थापना करने का प्रयास करेंगे तो असफल रहेंगे। आजकल रजगुण और तमगुण की चर्चाएं होती हैं। किसी ने मुझे कोई टीवी के ऊपर कोई वाद चल रहा दिखाया, वास्तव में सभी लोग चिल्ला रहे हैं, कोई किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। किसकी आवाज सबसे ऊंची है, ये प्रतियोगिता हो रही थी। कोई भी दूसरे की बात नहीं सुनता है और नहीं वो जो बात करते हैं उनका खंडन सही तरह से करते हैं, केवल चिल्ला रहे हैं, केवल गर्मी हो रही है। फिर बात कहीं रह जाती है, परस्पर व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे के ऊपर कुछ भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं। सब टीवी के ऊपर सब कुछ तमाशा चलता है। इसलिए ऐसे स्पर्धा में कभी कभी भक्तों को निमंत्रण दिया जाता है ना, भक्त लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं है। यदि किसी को कोई बात समझानी है तो उससे पहले बहुत थोड़ा शांत होना चाहिए मन में। मन में शांत नहीं होगा तो भक्त सुन नहीं पाएगा, वो सहन नहीं कर पाएगा इतना ज्ञान। तो जब मन शांत होता है, तब जब सात्विक मन होता है, तब हम कुछ समझ सकते हैं। परंतु ऐसे वातावरण में जब सब एक दूसरे के ऊपर नीचे खींचने का प्रयास कर रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, तो ऐसे नहीं चलता। इसलिए हमारे भक्त ऐसे इसमें नहीं जाते, कम से कम नहीं जाना चाहिए। लेकिन उस समय ऐसे नहीं हुआ करता था। दो प्रतिद्वंदी आमने सामने बैठते थे, सारे उस स्थान के और अन्य स्थानों के विद्वान आके बैठते थे उनको घेर के, और चलती थी स्पर्धा। एक कोई विद्वान है वो कुछ बोलेंगे, कम समय के लिए हो लंबे समय के लिए हो, दूसरे व्यक्ति ध्यान से सुनेंगे। ध्यान से सुन के जो उनकी विचारधारा है उसको अपने शब्दों में बताएंगे इतनी अच्छी तरह से कि शायद वो भी खुद नहीं बता पाए। ये है प्रथा, इसको पूर्व पक्ष कहते हैं। समझ लीजिए, एक आस्तिक है और एक नास्तिक है, ठीक है। अब दोनों वाद के लिए बैठे हैं। अब नास्तिक कुछ अपनी बात कहेगा, भगवान किसने देखा है क्या, जो भी वो करते हैं, अनाप शनाप बोलते रहते हैं, बोल लेते हैं। फिर जो आस्तिक को चाहिए, फिर वो कहता है कि ठीक, अच्छा आपके सिद्धांत इस प्रकार से, आप कहना चाहते हैं कि एक भगवान नहीं है इस कारण से, दो ये, तो ऐसे सही तरह से जो नास्तिकवाद है उसको उसके सारांश में प्रस्तुत करते हैं, फिर एक के बाद एक उसका खंडन करना शुरू करते हैं। फिर जब ये कुछ बोलते हैं तो फिर उनके प्रतिद्वंदी आगे चल के उनकी बात सुनेंगे, फिर वो कुछ और आगे चल के अपनी बात रखेंगे। तो केवल 20 मिनट आधे घंटे की बात नहीं है, कई दिनों तक चलता था ऐसे, सुबह से लेकर शाम तक बिना रुके हुए स्पर्धा चलती थी एक दूसरे के बीच में। फिर शाम को सब विश्राम के लिए जाते थे, दोनों ही प्रार्थना करते थे, भगवान हमें कुछ विजय दिला दीजिए, ये बड़े तगड़े आदमी हैं सामने वाले, उनके तर्क बड़े, कैसे करना चाहिए क्या करना चाहिए। रामानुजाचार्य के साथ ऐसे हुआ था, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी, फिर भगवान ने उनके अंदर से एक विचार दिया था, ये तर्क करो, और वो तर्क करने से उनके प्रतिद्वंद्वी जो थे वो हार गए। तो खैर, जो मध्वाचार्य और श्याम शास्त्री के बीच में यहां संवाद हुआ वो कई दिनों तक चला। श्याम शास्त्री भी कोई छोटे मोटे विद्वान नहीं थे, हालांकि वो मायावादी थे, बहुत बड़े पंडित थे, तो अंततः वो हार गए। मध्वाचार्य ने इतने अच्छी तरह से उनके मायावाद सिद्धांत का खंडन किया कि श्याम शास्त्री को कोई और चारा नहीं रहा, उन्होंने मान लिया। लेकिन देखिए बौद्धिक ईमानदारी कैसी होती है, ऐसे प्रथा थी ऐसी स्पर्धाओं में कि जो हार जाता है वो जीतने वाले के सिद्धांत को स्वीकार करेगा और उसका शिष्य बन जाएगा, ऐसे होता था। आजकल ऐसे कभी होता है? नहीं होता है। तो श्याम शास्त्री जब हार गए तो उन्होंने वैष्णव धर्म को स्वीकार किया और मध्वाचार्य के शिष्य बन गए। तो मध्वाचार्य ने उनको संन्यास दीक्षा दे दी और उनका नाम हुआ श्री नरहरि तीर्थ। तो नरहरि तीर्थ फिर अपने गुरु के साथ उडुपी वापस चले गए। उधर उडुपी में श्रील मध्वाचार्य ने नरहरि तीर्थ से कहा कि कलिंग में, कलिंग राज्य में सीताराम लक्ष्मण की बहुत ही प्राचीन मूर्तियां हैं और वहां पे इनकी अर्चना, उनकी पूजा उपासना नहीं हो रही है, तो उन विग्रहों को यहां ले आओ ताकि हम अच्छी ढंग से उनकी सेवा कर सकें। तो नरहरि तीर्थ चल पड़े और पहुंचे कलिंगा प्रांत में। जैसे ही कलिंगा प्रांत में पहुंचे, फिर एक स्थान के नीचे अपने ध्यान जप आदि करने के लिए बैठे। उधर कलिंग प्रांत में क्या हुआ था कि जो राजा थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी और उनका जो बेटा था, जो राजकुमार है, वो एक छोटा बच्चा था, इसलिए वो राजगद्दी पर बैठने के लिए योग्य नहीं था। तो जब ऐसे होता है कि राजकुमार बहुत कम आयु का होता है तो फिर कोई ऐसे व्यक्ति को चुना जाता है जो कि इस बच्चे को राजगद्दी पर बिठाए, पर उस बच्चे का, राजकुमार का प्रतिनिधित्व करते हुए कोई ऐसे एक बहुत विश्वास वाला मंत्री हो जो सारे राज्य को चलाए, जो वास्तव में राजा के समान ही है, क्योंकि सारी शक्ति उस व्यक्ति के पास हुआ करती थी। तो ऐसे कई उदाहरण हैं इतिहास में। तो अभी कौन योग्य व्यक्ति है जिसको चुना जा सके कि जो राजा के समान कोई मंत्री बने? जब तक कि ये बच्चा ठीक बड़ा ना हो जाए, कौन ये मंत्री बन सकता है? तो एक हाथी छोड़ा गया, ऐसे भी कभी कभी किया जाता था। एक हाथी के सूंड में फूलों की माला दी गई और ये निर्णय था कि जिसे जाके ये हाथी फूलों की माला पहनाएगा वही योग्य व्यक्ति बन होगा मंत्री पद संभालने के लिए। राजकुमार का नाम था भानुदेव। तो खैर ये हाथी इधर उधर घूम रहा था, उसको छोड़ देते थे, और जिस स्थान में नरहरि तीर्थ बैठे थे ध्यान करते हुए, ठीक उसी स्थान में जाके नरहरि तीर्थ को फूलों की माला पहना ली। ये अरे ये क्या हो, किसने माला पहनाई? हाथी ने आके माला पहना दी। तो आश्चर्यचकित हो गए। हाथी के पीछे पीछे सारे लोग आ रहे थे। तो नरहरि तीर्थ को उन्होंने निवेदन किया कि आप बनिए, राजा बनिए आप, जब तक ये राजकुमार बड़ा नहीं हो जाता है। तो वैसे भी उसी परिवार के थे वो, तो उन्होंने स्वीकार किया। और कम से कम 12 वर्षों तक उन्होंने राज्य को संभाला। बहुत ही धार्मिक थे और बहुत ही शक्तिशाली भी थे, और उनकी वजह से वास्तव में वैष्णव धर्म कलिंग प्रांत में बहुत फैला। तरह तरह के उन्होंने चीजें की, अच्छी तरह से राजगद्दी की रक्षा की, राज्य की रक्षा की, मंदिर की रक्षा की। ऐसे बताया जाता है कि एक बार जो शबर हैं, शबर जाति के लोग, शबर की चर्चा हम पहले किए थे ना जगन्नाथ भगवान के संदर्भ में, तो शबर समाज के लोगों ने आक्रमण किया श्री कुरुक्षेत्र में मंदिर के ऊपर। तो स्वयं नरहरि तीर्थ ने अस्त्र उठाए और अपनी सेना के साथ शबरों को वहां से भगा दिया, और इस तरह से उन्होंने कूर्मदेव के मंदिर की रक्षा की। तो नरहरि तीर्थ वहां पे काफी समय के लिए रहे, और समय जब बीत गया, 12 साल हो गए, तो भानुदेव बड़े हो गए। तो भानुदेव को उन्होंने राज्य सौंप दिया, और भानुदेव ने कहा कि मैं आपको क्या भेंट दे सकता हूं, आपने इतने निस्वार्थ ढंग से इस राज्य को संभाला है और राज्य की रक्षा की है आपने, तो हम आपके बहुत आभारी हैं। देखिए ऐसे निराशक तो होना चाहिए, आजकल किसी को गद्दी मिल जाए तो छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं। प्रभुपाद जी कहा एक बार प्रवचन में कहते थे कि आजकल किसी को राजनीति की कोई गद्दी मिल जाए, वो व्यक्ति कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो, जब तक कोई उसे गोली से नहीं उड़ाएगा वो कुर्सी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है, है ना। परंतु नरहरि तीर्थ ऐसे नहीं थे। जब समय आया उन्होंने सोचा अब इनको दे देना चाहिए। तो जब भानुदेव ने उनसे निवेदन किया कि कोई भेंट स्वीकार करें, तो नरहरि तीर्थ ने सीता राम लक्ष्मण की मूर्तियों के लिए निवेदन किया, तो बड़े खुशी से उन्होंने दिया। वहां कलिंग में भी उन्होंने सीता राम लक्ष्मण की मूर्तियों की सेवा के लिए बहुत ही उपयुक्त व्यवस्था की, क्योंकि ऐसे ही मूर्तियों को रखना बिना सेवा किए हुए ये अच्छा नहीं होता है। तो फिर इन मूर्तियों को साथ में लेकर नरहरि तीर्थ वापस चले गए उडुपी, और मध्वाचार्य को उन्होंने दे दिए। मध्वाचार्य ने लगभग 80 दिन उनकी सेवा की, और फिर अपने शिष्य पद्मनाभ तीर्थ को उन्होंने सीता राम लक्ष्मण की मूर्तियां दी। उन्होंने लगभग 6 महीने तक उनकी सेवा की, और फिर नरहरि तीर्थ को ये लौटा दिए मूर्ति। फिर नरहरि तीर्थ इनकी सेवा करते रहे, और प्रचार प्रसार कार्य में काफी भ्रमण करते रहे। एक बार जब वो एक गांव में थे तो उनके स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि यहाँ इस शहर के बाहर जो एक तालाब है उसमें मेरा विग्रह है, उसकी स्थापना करना, मंदिर बनाना। तो ऐसे ही नरहरि तीर्थ ने किया और प्रचार कर करके जब बहुत साल बीत गए तो फिर अंततः नरहरि तीर्थ तुंगभद्रा नदी के तट पे आए और अपने अंतिम समय तक वहीं पे वो रहे। तो श्री कूर्म क्षेत्र के मंदिर में जो पत्थरों के ऊपर, दीवारों के ऊपर सब लिखा है, वो इस बात की पुष्टि करता है कि नरहरि तीर्थ की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है इस स्थान के लिए। और भानुदेव महाराज थे पहले, और उसके बाद में भी नरसिंह देव, दूसरे नरसिंह देव राजा, उनके समय में भी शायद वो थे। और ऐसे श्रील प्रभुपाद जी भी अपने तात्पर्य में इन कई बातों को बताते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि रामानुज संप्रदाय और मध्वाचार्य के संप्रदाय का संबंध कितना गहरा है। अब श्री चैतन्य महाप्रभु का संबंध, गौड़ी संप्रदाय का संबंध, ये भी काफी गहरा है। महाप्रभु तो आए ही थे वहां पर। वैसे इस कथा का वर्णन करने के लिए थोड़ा समय लगेगा और अब हमारे पास समय नहीं है सारी कथा का वर्णन करने के लिए। फिर भी इतना जान लीजिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए थे, उन्होंने यहाँ दर्शन किया था, कीर्तन किया था। उनके कीर्तन नृत्य आदि को देखकर बहुत सारे लोग प्रभावित हो गए थे, वो सारे के सारे वैष्णव बन गए थे, कृष्ण भक्त बन गए। और उन्होंने विशेष करके दो ब्राह्मणों के ऊपर चर्चा कृपा की, एक का नाम था कूर्म ब्राह्मण और दूसरे थे वासुदेव विप्र। तो किस प्रकार से इन्होंने इन दोनों के ऊपर कृपा की, इसकी चर्चा आज शाम को हम जब विशाखापट्टनम मंदिर में लौटेंगे वहां पे करेंगे। अब हम कूर्मदेव कूर्म स्थान की ओर आगे बढ़ेंगे, इससे पहले कि गर्मी और बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो आपसे निवेदन है कि जैसे ही सूचनाएं समाप्त हो जाएं, तुरंत आप अपने अपने बसों में जाएं ताकि हम अच्छी तरह से दर्शन सब कर सकें। श्री कूर्मदेव भगवान की जय। श्री जगन्नाथ देव भगवान की जय। श्रील रामानुजाचार्य की जय। श्री नरहरि तीर्थ की जय। श्री गौरंग महाप्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा।